ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की दो सर्वदलीय बैठकों में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ महीने पहले न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका या कहीं भी भ्रष्टाचार पर राष्ट्र के हित में चर्चा होनी चाहिए। भारत ने एशियाई विकास बैंक की पाकिस्तान को दी गई किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की है। भारत ने पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा व्यय, कर और सकल घरेलू उत्पाद के घटते अनुपात तथा प्रमुख व्यापक आर्थिक सुधारों पर स्पष्ट प्रगति की कमी के मद्देनजर बैंक के संसाधनों के संभावित दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए विचार विमर्श किया। श्री मार्लेस ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में समर्थन व्यक्त किया। भारत के दो और ऐतिहासिक स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में भारत की निरंतर प्रगति की सराहना की है। राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भारत की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और इसमें जन भागीदारी भी शामिल है। श्री यादव ने इसे पर्यावरण संरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी के फोकस का प्रमाण बताया है। रूस ने पुष्टि की है कि यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पुल पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एक विस्फोट हुआ था, लेकिन कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और पुल भी पहले की तरह काम कर रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कहा है कि उसने पानी के नीचे विस्फोटकों का उपयोग कर तीसरी बार क्रीमिया पुल पर हमला किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम 5 सितंबर को चीन के हांगझाऊ में थाईलैंड के साथ महिला एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत करेगी। ये मैच गोंगशू कैनाल स्पोर्ट्स पार्क में होगा। ये प्रतियोगिता 5 से 14 सितंबर तक चलेगी। भारत को पिछले चैंपियन जापान, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ पूल बी में रखा गया है। पूल ए में मेजबान चीन, कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे शामिल हैं। भारत का सामना 5 सितंबर को थाईलैंड, 6 सितंबर को जापान और 8 सितंबर को सिंगापुर से होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ और गैर वरीयता प्राप्त लोइस बोइसन ने पेरिस में अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमरीकी खिलाड़ी गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त और अपने ही देश की मेडिसन कीज को 6-7, 7-4, 6-1 से हराया। अंतिम आठ के एक अन्य मुकाबले में फ्रांस की लोइस बोइसन ने 6वीं वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी मीरा एंट्रीवा को 7-6, 6-3 से हराया। पुरुष सिंगल्स में विश्व के नंबर एक यानिक सिनर ने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के गैर वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुबलिक को 6-1, 7-5, 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।